मेरी समझ से वर्तमान जो स्थिति है और जो परिस्थितियां एशिया में खासकर भारत चीन संबंधों को सामने रखते हुए भारत वियतनाम रिश्तों की जो एक सामरिक महत्वता है वो थोड़ी सी कुछ अधिक बढ़ गई है। और वैसे देखा जाए तो भारत और वियतनाम के बीच में ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और ये एक बहुत ही एक मजबूत रिश्ता रहा है भारत का, लेकिन बीच में कुछ सालों तक मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा एक बिनाइन निग्लेक्ट जो है वो कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में इसका जो सामरिक महत्व है वो अवश्य बढ़ा है और मुझे लगता है कि मोदी जी इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि चीन का जो एक बढ़ता स्वरूप है उसमें भारत और वियतनाम के रिश्ते को वो एक अधिक अहमियत देना चाहते हैं।
जी, ये बताइए अलका जी कि जो भारत वियतनाम के जो रिश्ते हैं उसमें चीन की कितनी बड़ी भूमिका है, और क्या ये जो रिश्ता है ये ज्यादातर चीन के मद्देनजर इसको देखा जाना चाहिए, या एक अलग रिश्ता भी है भारत वियतनाम का जो आगे चलकर उसके कई पहलू हो सकते हैं?
नहीं, मैंने जैसा कहा कि एक ऐतिहासिक संबंधों का एक ऐतिहासिक अपना वजूद रहा है और अगर आप याद करें तो जब वाजपेयी जी चीन यात्रा पे गए थे 1979 में, तब उस समय चीन ने वियतनाम पर जब हमला किया था तो उसके वजह से वाजपेयी जी ने अपनी यात्रा खत्म कर दी थी और ये कहा भी था कि ये वियतनाम के प्रति हमारी जो एक सॉलिडारिटी है वो हम कर रहे हैं, तो एक ऐतिहासिक उसका एक है और नेहरू के समय से, लेकिन उसका एक अलग महत्व है। और आज के संदर्भ में मैंने जैसे कहा कि एशिया में बहुत बहुत ही तेजी से सामरिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव चला आ रहा है और उसमें ये भारत वियतनाम रिश्तों को एक अलग उसको कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस उसकी बढ़ रही है, क्योंकि चीन फैक्टर जो है वो जरूर कहीं ना कहीं इस पर एक साया डाल रहा है।
लेकिन ये बताइए कि क्या कुछ ठोस निकल कर आ सकता है इस यात्रा के दौरान, या ये ज्यादा एक पॉस्चरिंग की बात हो रही है?
दो बातें हैं यहाँ पे, एक तो ये है कि पिछले 1.5 या 2 दशक से भारत की यही खोज रही है कि शीत युद्ध के पश्चात जो एक सभी देशों को एक मौका मिला था कि वो अपने एक रिश्तों में एक व्यापकता लाएं और महाशक्तियों के साथ अन्य शक्तियों के साथ वो साथ साथ अपने रिश्ते बढ़ाते रहे, और जैसे शीत युद्ध में होता था कि आप अगर एक के साथ हैं तो दूसरे के खिलाफ हैं, उस तरह का बंधन नहीं रहा था। तो भारत की विदेश नीति का एक यही कोशिश रही है कि वो एक व्यापक रूप से अपनी रिश्तों को एशिया में बाहर यूरोप और अमेरिका सबके साथ एक सभी रिश्तों को एक ऑटोनोमस स्वरूप देने की कोशिश करें, तो उसके संदर्भ में ये एक पहल रही है। और हम देख रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद से उन्होंने कोशिश ये की है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, इनके साथ सोवियत यूनियन के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है रिश्ता, चीन के साथ बहुत कोशिश की जा रही है कि एक सहयोगी एक रिश्ता बनाए, क्योंकि अब ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता रहेगा एशिया में। तो ये एक ब्रॉडर जो बैकड्रॉप है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो हर चीज को अगर हम सिर्फ एक या दो देशों के वजह से आंकलन करेंगे तो मुझे लगता है हम थोड़ा सा उसमें अपने आप को एक कोने में ले जाके हम लिटरली वहां पे खड़े हो जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और दूसरी तरफ से ये ऑटोनोमी की जो बात हो रही है उसको हमें कायम रखना चाहिए। तो
जी
मुझे लगता है कि हर चीज को हम सिर्फ एक या दो पहलुओं के उसमें तोले नहीं।
जी ये बताइए अलका जी कि भारत की जो लुक ईस्ट नीति है, क्या आपको लगता है वो अब, जैसा कि आपने कहा कि बहुत तेजी से परिस्थितियां बदल रही है एशिया में, क्या आपको लगता है वो और ज्यादा सक्रिय हो सकती है आने वाले समय में, और उसमें वियतनाम की काफी अहम भूमिका रह सकती है भारत के लिए?
बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये लुक ईस्ट को मोदी सरकार के दौरान जो विदेश मंत्री थी उन्होंने एक्ट ईस्ट करके कहा कि इसको आगे बढ़ाना है, तो ये तो है ही है। और ये कोशिश यही की जाएगी कि जो खासकर साउथ ईस्ट एशिया में जो एक आर्थिक एक मोमेंटम हो रहा है उसमें भी भाग लेने की कोशिश की जाएगी। तो ये लगता है कि भारत यही प्रयास करेगा कि अपने आप को वो एशिया में सिर्फ चीन के परिप्रेक्ष्य में नहीं, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट एक्टर, एज एन इमर्जिंग पावर, वो खुद भी अपना एक वर्चस्व कायम करे। और अभी हाल ही में विदेश जो सचिव थे उन्होंने सिंगापुर में एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने यही कहा था कि भारत एक महाशक्ति तो खैर नहीं, लेकिन एक उभरती शक्ति के रूप में अपनी भूमिका एशिया में अदा करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि जो छोटे छोटे एशिया के देश हैं और जो भारत के साथ एक मजबूत आर्थिक राजनीतिक रिश्ता बनाना चाहते हैं, उसको वो ठोस करने की कोशिश अवश्य होगी, और मुझे लगता है इसमें एक जोरदार पहल होगी।
जी, क्या आपको लगता है कि जो साउथ चाइना सी को लेकर विवाद है उसमें भारत कुछ और जो है भूमिका अदा करेगा, या आपको लगता है कि अभी तक जिस तरह का स्टैंड रहा है भारत का, मतलब बहुत ज्यादा उसमें भारत ने हस्तक्षेप नहीं किया है, कोई बहुत भड़काने वाले बयान नहीं दिए, क्या आपको लगता है वही पॉस्चरिंग रहेगी भारत की भविष्य में भी?
हाँ, मोटे मोटे तौर से मुझे नहीं लगता कि उससे आगे भारत इस समय उसको कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए एक तो सीधा सीधा बात तो यही आ रही है कि हम उसमें एकदम डायरेक्टली उसमें हम कंसर्न नहीं है, और जहां तक अंक्लॉस या अंतरराष्ट्रीय जो पॉलिसीज नीतियां ट्रीटीज और हैं उनके उनको हम बढ़ावा देंगे, और जिस तरह के अभी सामान्य से बयान आए हैं मुझे लगता है कि उसी तरह का वो जो रुख है बहुत ही केयरफुली कंसिडर्ड है और बड़े सोच समझ के उसको जो उनका रिस्पांस था उसको बनाया गया है, मुझे लगता है उसी पर कायम रहेंगे क्योंकि उसकी सराहना तकरीबन सभी ने की है।
जी, एक आखिरी सवाल अलका जी आपसे कि इस सब के परिपेक्ष में आप भारत और चीन के रिश्ते कहाँ जाते देखती हैं? क्या जो भारत वियतनाम रिश्तों का साया है वो क्या भारत चीन के रिश्तों पर पड़ सकता है, या वो रिश्ते एक अलग डायमेंशन पर है, एक अलग स्तर पर हैं, तो उससे कुछ खासा फर्क शायद ना पड़े?
नहीं, देखिए आज जैसे मैंने कहा कि परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं, और मेरी समझ से भारत और चीन का जो रिश्ता है ये एशिया का सबसे अहम रिश्ता है, और चूंकि इस समय भारत और चीन के बीच में काफी ऐसी समस्याएं उठ के आई हैं जिससे दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ी शंकाएं बढ़ी हैं, थोड़ी आशंकाएं बढ़ी हैं, उसके चलते मुझे नहीं लगता कि ये इस समय भारत और चीन अपने रिश्तों को तीसरे रिश्तों से अलग कर पाएंगे। तो साया तो अवश्य पड़ेगा, एक ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से आप सभी देश एक दूसरे से मिले हुए हैं, भारत हर समय यही देखता है कि चीन पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है या अब हम उसके अन्य पड़ोसियों के साथ क्या कर रहा है, चीन को बड़ी शंका है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के क्या रिश्तों के क्या स्वरूप होएगा, और वियतनाम के खिलाफ तो उन्होंने थोड़ा सा बयान भी दिया था कि वो नहीं चाहते हैं कि भारत वियतनाम को आर्म्स या जो ब्रह्मोस की बात चल रही जो कि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है जिसकी, तो ये सारी बातें तो जनरल जो मीडिया है या जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये सब बातें कर रहे हैं, तो इसमें शक कोई नहीं है कि रिश्तों के ऊपर, भारत चीन रिश्तों के ऊपर दोनों देशों के अन्य जो रिश्ते हैं उनका असर होगा। सवाल ये उठता है कि मोदी जी और शी जिनपिंग दोनों आपस में एक दूसरे को किस तरह से ये आश्वासन दे सकते हैं कि ये रिश्ता अहम है और दोनों इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए बाधित हैं।
अलका जी, हमें पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।